लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, जुलाई महीने में संत पापा फ्रांसिस के आम दर्शन समारोह स्थगित रहते हैं, अतः इस दौरान हम युवाओं पर संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलीसिया के नाम संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनेंगे। क्रिस्तुस विवित का पांचवा अध्याय युवाओं की राहों के बारे में जिक्र करता है। इस अध्याय के अपने पिछले प्रसारण में हमने कल साहसिक प्रेरितों पर चर्चा की। आज हम इस पर जारी रखते हुए छठवें अध्याय की शुरुआत करेंगे। साक्ष्य की महत्वपूर्णता का अर्थ यह नहीं कि हम वचनों के संदर्भ में अपने को चुप कर लें। हम यीशु ख्रिस्त के बारे में दूसरों से चर्चा क्यों ना करें? हम दूसरों को क्यों यह न बतलाएं कि वे हमें जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं, कि हम उनसे वार्ता करते हुए एक आनंद का अनुभव करते हैं। हमें उनके वचनों पर चिंतन करने से लाभ होता है। युवागण, आप अपने को दुनिया की केवल उन बातों से प्रभावित होने ना दें जो गलत और छिछली हैं। आप धारा के विरुद्ध तैरना सीखें। आप यह सीखें कि यीशु ख्रिस्त को दूसरों के साथ कैसे बांटना है और अपने उस विश्वास को जिसे उन्होंने आपको प्रदान किया है। आप संत पौलुस के उन्हीं मनोभावों से अपने को उत्प्रेरित होने दें जो उन्हें रोक नहीं पाते हैं। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा ना करूं। यीशु हमें कहां भेजते हैं? हमारे लिए इसकी कोई सीमाएं नहीं है। वे हमें सभी जगह अपने सुसमाचार को प्रसारित करने हेतु भेजते हैं। सुसमाचार कुछ लोगों के लिए नहीं वरन सबों के लिए है। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं जो हमारे करीब हैं, जो हमारी बातों को सहज ही सुनते और हमारा स्वागत करते हैं। यह सबों के लिए है। यीशु हमें सुसमाचार को दुनिया के विभिन्न स्थानों तक ले जाने से नहीं डरने को कहते हैं। दुनिया के सीमांतों तक जहां लोग अपने में अति उदासीनता की स्थिति में जीवन यापन करते हैं, ईश्वर हम सबों की खोज करते हैं। वे चाहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में उनके करुणामय प्रेम की खुशी का एहसास करें। वे हमें निमंत्रण देते हैं कि हम जहां कहीं भी हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं उस परिस्थिति में निर्भय होकर अपने प्रेरितिक कार्य को पूरा करें। अपने पड़ोस में, विद्यालय, खेल मैदान या सामाजिक जीवन में, चाहे हम स्वयं सेवी कार्य में हों या अपने दफ्तर में, हम जहां कहीं भी रहते हों, हमारी परिस्थिति सुसमाचार की खुशी को दूसरों के संग साझा करने हेतु हमें एक अवसर प्रदान करती है। यीशु ख्रिस्त ने अपने जन सामान्य जीवन काल में लोगों के साथ मिलते हुए इसी कार्य को किया। संत पापा युवाओं से कहते हैं कि वे आपको प्यार करते हैं क्योंकि ये आप ही हैं जिनके द्वारा यीशु अपनी ज्योति और खुशी को प्रसारित करना चाहते हैं। वे आपके उत्साह, साहस और जोश में भरोसा करते हैं। प्रेरिताई के प्रति संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान आकर्षित कराते हुए कहते हैं कि हम अपने में यह ना सोचें कि प्रेरिताई अपने में सहज और आसान है। कुछ युवा लोगों ने यीशु ख्रिस्त की प्रेरिताई कार्य को करने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी शहादत के संबंध में कोरिया के धर्माध्यक्ष गण कहते हैं, शहीदों का अनुसरण करते हुए हम आशा करते हैं कि हम सभी गेहूं के बीज हो सकते हैं जो मानवता की मुक्ति हेतु साधन बनता है। यद्यपि हमारा विश्वास राई के दाने के समान छोटा है, ईश्वर इसे विकसित करेंगे और इसे अपने मुक्ति के कार्य में एक साधन स्वरूप उपयोग करेंगे। युवा मित्रों, आप अपनी शक्ति, साहसिकता, सृजनात्मकता का उपयोग करते हुए कल की प्रतीक्षा ना करें, जिसके द्वारा आप दुनिया को बदलने की शक्ति अपने आप में रखते हैं। आपका युवा काल जीवन का एक मध्यस्थ नहीं है, आप ईश्वर के वर्तमान हैं और वे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में फल उत्पन्न करें। हम अपने को देने में अधिक प्राप्त करते हैं। हमारे लिए अपने भविष्य की तैयारी जितना बेहतर हो सके, अपने वर्तमान को विशेष रूप में निष्ठा और उदारता में जीना है। संत पापा फ्रांसिस क्रिस्तुस विविध के 6वें अध्याय में युवाओं को अपनी जड़ों में बने रहने का आह्वान करते हुए कहते हैं, मैंने जवान और सुंदर पेड़ों पर गौर किया है, उनकी डालियां आकाश को छूती हैं, ऊंचाई में बढ़ती जाती हैं और वे आशा के संगीत के समान लगते हैं। बाद में आंधी आने पर वे गिर जाते और बेजान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं। उन्होंने बिना मजबूत जड़ के अपनी डालियां फैलाई थीं। अतः प्रकृति ने जो ही अपनी शक्ति दिखलाई, वे गिर पड़े। यही कारण है कि मुझे यह देखते हुए दुख होता है जब युवाओं को बिना जड़ों के भविष्य का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मानो कि विश्व की शुरुआत अभी हो रही हो, क्योंकि विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि सहारा देने के लिए जड़ें मजबूत ना हों, क्योंकि जब पकड़ने के लिए कुछ भी ना हो तो बहना आसान हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं इसे एक छोटे अध्याय में चर्चा करना चाहूंगा। यद्यपि हम इस मुद्दे पर गौर करना चाहते हैं, तो क्या हम युवाओं के आनंद को उनके झूठे पंथ से अलग कर सकते हैं, जिसको युवाओं के साथ हेरा फेरी एवं उन्हें तोड़ मरोड़ करने के लिए उपयोग किया जाता है? हम इस पर चिंतन करें। यदि कोई युवाओं से कहे कि वे अपने इतिहास की अवहेलना करें, अपने बुजुर्गों के एहसास का तिरस्कार करें, अतीत को अनदेखा करें एवं भविष्य को देखें, तब क्या यह आसान नहीं हो जाता कि उन्हें अपने आप से अलग कर दिया जाए, जिससे उन्हें जैसा बतलाया जाए वे वैसा ही करें? इसके लिए युवाओं को आधारहीन बनाया जाता है, उन्हें उखाड़ा एवं अविश्वासी बनाया जाता है, जिससे वे उनकी वादाओं पर विश्वास करें एवं उनकी योजनाओं के अनुसार कार्य करें। कई विचारधारा इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वे हर प्रकार की विभिन्नताओं को नष्ट करते हैं, जिससे कि वे बिना विरोध के शासन कर सकें। ऐसा करने के लिए उन्हें युवा लोगों की जरूरत है, जो अपने लिए इतिहास की जरूरत नहीं समझते हैं। वे बीती पीढ़ी से प्राप्त आधुनिक और मानवीय समृद्धि से घृणा करते और उनसे आने वाली हर एक चीज को अनदेखा करते हैं। हेर फेर के ये मालिक एक दूसरी कार्य नीति अपनाते हैं। युवा संप्रदाय जो उन सारी चीजों को खारिज करता है जो युवा नहीं है, अतः वह अपने में तुच्छ और अप्रचलित है। जवान शरीर इस नए संप्रदाय का प्रतीक बनता है। उस शरीर से जुड़ी हुई हर चीज को देवतुल्य और लालसा की नजरों से देखा जाता है, जबकि जो जवान नहीं है उसे तुच्छ समझा जाता है। किंतु युवाओं का यह संप्रदाय मात्र एक साधन है जो अंततः युवाओं के लिए अपमानजनक साबित होता है। यह उन्हें किसी भी वास्तविक मूल्य से अलग कर देता और उन्हें व्यक्तिगत, आर्थिक या राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करता है। श्रोताओं, हमने कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विविध अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है, तेरे लिए भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। जीवन से थक कर है क्यों उदास, यीशु है देता जीवन में आस। अनंत जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष मारियो जोर्दाना को फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर संस्थान का असाधारण आयुक्त नियुक्त किया, जिनकी भूमिका संस्थान के प्रशासन में स्पष्टता लाना और उनके नियमों को अपडेट करना होगा। परम धर्म पीठ और वाटिकन सिटी राज्य के सार्वजनिक अनुबंधों के पुरस्कार के लिए प्रतिक्रियाओं की पारदर्शिता, नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा पर संत पापा फ्रांसिस ने हाल ही में अपने मोतू प्रोप्रियो द्वारा घोषणा की थी। संत पापा ने 29 जून को प्रेरितिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष मारियो जोर्दाना को फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर संस्थान का असाधारण आयुक्त नियुक्त किया। वाटिकन प्रेस कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि महाधर्माध्यक्ष मारियो को संस्थान के नियमों को अपडेट करने, प्रशासन को स्पष्ट करने और संस्थान के प्रशासनिक एवं तकनीक कार्यालयों को पुनर्गठित करने का काम सौंपा जाएगा। इस नाजुक कार्य में आयुक्त को एक आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रेस कार्यालय ने कहा कि यह चुनाव ऑडिट जनरल के कार्यालयों की एक रिपोर्ट का भी अनुसरण करती है, जिसके कारण फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर के तकनीकी और प्रशासनिक कार्यालयों में दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिग्रहण किया जाएगा। बाद की कार्रवाई राज्य के महासचिव को सूचित करने के बाद न्याय के प्रवर्तक जॉन पियरो मिलानो और उप प्रवर्तक अलेसांद्रो दिद्दी के फैसले से अधिकृत था। फैब्रिक ऑफ सेंट पीटर वाटिकन में सेंट पेत्रुस महागिरजाघर के निर्माण और कलात्मक निर्माण के लिए आवश्यक सभी कार्यों के प्रबंधन के लिए बनाई गई एक संस्था है। इस संस्था को दुनिया भर के सबसे बड़े महागिरजाघर के जटिल प्रबंधन और आसपास के क्षेत्रों की संरचनाओं को देखभाल करने का कार्य सौंपा गया है। उधर लैटिन अमेरिका के धर्माध्यक्ष सम्मेलन और पान अमेजेनियन एक्लेसिया नेटवर्क के अध्यक्ष ने अमेजन क्षेत्र में धर्माध्यक्ष धर्म सभा कराने के उद्देश्य से अमेजन क्षेत्र की कलिसियाई सम्मेलन की घोषणा की। यह घोषणा 29 जून संत पेत्रुस और संत पौलुस के पर्व दिवस पर लैटिन अमेरिका के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष मिगुएल कारब्रेजोस और पान अमाजोन एक्लेसियल नेटवर्क के अध्यक्ष कार्डिनल क्लाउडियो हामस द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में आई है। जारी बयान में बताया गया कि कलिसियाई सम्मेलन के गठन का निर्णय 26 से 29 जून तक एक वर्चुअल सम्मेलन के दौरान किया गया। यह सम्मेलन कैरोस की उस उम्मीद का हिस्सा है जो कलीसिया के लिए और अमाजोन क्षेत्र में एक अभिन्न परिस्थितिकी के लिए नए रास्ते खोलने हेतु धर्म सभा यात्रा को आगे बढ़ाता है। बयान में धर्माध्यक्षों ने संत पापा फ्रांसिस की इस नई कलीसियाई इकाई के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को रेखांकित करते हैं। हमारी कलीसिया का समारोह संत पापा फ्रांसिस की सेवा के लिए धन्यवाद का एक संकेत भी है। हम नई धर्माधिक्ष धर्म सभा के निर्माण पर विचार करते हैं, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने पूरी प्रक्रिया को करीब से देखा है। अंत में धर्माधिक्षों ने बयान में लिखा कि अमेजन क्षेत्र के कलीसियाई सम्मेलन का निर्माण लैटिन अमेरिका के सामने आने वाले कई खतरों जैसे कोरोना वायरस महामारी, हिंसा, बहिष्कार और वहाँ के जनजातीय लोगों के खिलाफ मौत की वास्तविकताओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए हुआ है। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने यूरोपीय संघ के राजदूत को देश छोड़ने का आदेश दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ परिषद के जवाब में प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक सत्ता हस्तांतरण की दिशा में दबाव बनाने के लिए मादुरो के करीबी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मादुरो का यह आदेश सोमवार को राज्य टेलीविजन पर संबोधन के दौरान आया है, इसलिए यूरोपीय संघ के राजदूत इसाबेल ब्रिटानेल ग्रासिया एक उड़ान के बैकहैंड प्रस्ताव पर जा रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला में और बाहर सभी हवाई यातायात वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिए गए हैं। यूरोपीय संघ ने मादुरो के समर्थन लुइस पारा सहित वेनेजुएला के 11 अधिकारियों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध वाले कदम उठाए हैं। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के दायरे में अब कुल 36 अधिकारी आ गए हैं। इन सभी पर यात्रा प्रतिबंध और संपत्तियों को जब्त करना शामिल है। यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि ये प्रतिबंध व्यक्तिगत स्तर पर लगाए गए हैं। इन प्रतिबंधों से वेनेजुएला की जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर म्यांमार की कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCM ने एक बयान में कोविड-19 के बीच देश में जारी संघर्षों के प्रति खेद प्रकट किया और सरकार एवं सशस्त्र समूहों से शांति वार्ता के लिए आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस और संत पापा फ्रांसिस द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान सभी शत्रुता समाप्त करने की अपील के बावजूद म्यांमार के कैथोलिक धर्माध्यक्ष देश में जारी संघर्ष से दुखित हैं। धर्माध्यक्षों ने सरकार और सशस्त्र समूहों से अपील की है कि वे हर शत्रुता को समाप्त करें, बातचीत के मेज पर लौटें और पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए शांति से काम करें। म्यांमार कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने सोमवार 29 जून को एक बयान जारी किया, जिसमें काचिन, शान, काइन और राखिन राज्यों में जारी संघर्षों पर दुख प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2,50,000 से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। विशेष रूप से रखाइन की स्थिति को दिल दहला देने वाला बताते हुए CBCM ने कहा कि संघर्ष ने हजारों निर्दोष लोगों और विस्थापित परिवारों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। बारिश का मौसम और कोविड-19 महामारी स्थिति को बदतर कर रहे हैं और मानवीय सहायता की पहुंच एक बड़ी चुनौती साबित हुई है। CBCM ने बयान में कहा, म्यांमार सरकार और म्यांमार सशस्त्र बल तात्माओं सभी आंतरिक विस्थापितों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करके म्यांमार के सभी नागरिकों के अधिकारों के लिए उनकी जिम्मेदारियों पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।